ये राम कथा मंदाकिनी, राम कथा गंगा है। अब यह गंगा, तुलसी की राम कथा गंगा मंदाकिनी, वाल्मीकि की राम कथा मंदिर, एक मंदिर का दर्शन और दूसरा मंदाकिनी का दर्शन, दोनों दर्शनों में अंतर क्या है? आप सुनते हैं कि बड़ा भव्य मंदिर कहीं पर बना है, आप उस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, पूछते हैं किसी से, क्यों भाई जानते हो वह भव्य मंदिर कहां पर बना है? वह आपको बता देता है कि हां मुझे मालूम है, अमुक अमुक गांव में बना है, आप इस प्रकार से चले जाइए। तो मंदिर का दर्शन देश के ज्ञान की अपेक्षा रखता है, आपको देश मालूम होना चाहिए जहां पर वह मंदिर बना है, और फिर जब आपको उसका पता मालूम पड़ गया तो आप यह भी पूछते हैं, अच्छा यह भी तो बता दो मंदिर का पट कब बंद होता है, कब खुला रहता है, कि ऐसा ना हो कि आप चल करके इतनी दूर गए और मंदिर का पट बंद पाया तो आपका सारा श्रम व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए आप उस मंदिर के पट के खुलने और बंद होने की बात पूछते हैं, मानो मंदिर का दर्शन काल की भी अपेक्षा रखता है, देश की अपेक्षा रखता है, काल की अपेक्षा रखता है कि कहां पर मंदिर बना है और कब वह खुला रहता है। अब देश और काल दोनों जानकारी आपने ले ली, इसके बाद आप मंदिर में आते हैं और आकर के आपको क्या लगता है, आप गंदे हो गए हैं, कपड़े गंदे हो गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं जरा स्नान कर लूं, शुद्ध हो लूं और फिर उसके बाद मंदिर में प्रविष्ट होकर के देव दर्शन करूं। तो यह जो मंदिर में दर्शन है वह एक प्रकार की योग्यता की भी अपेक्षा रखता है कि आप शुचि हो लीजिए, पवित्र हो लीजिए, आपका तन गंदा है, कपड़ा गंदा है, आप जरा स्नान करके अपने तन को शुद्ध कर लीजिए, कपड़ा बदल लीजिए और फिर मंदिर में देव दर्शन के लिए आइए। तो मंदिर के दर्शन में इन तीन की अपेक्षा है, देश का ज्ञान, उसी प्रकार काल का ज्ञान, और उसी प्रकार हमने कहा कि योग्यता की अपेक्षा। अब यह जो मंदाकिनी का दर्शन है उसके लिए क्या करते हैं? मंदाकिनी कहती है कि देखो तुम्हें हिमालय में नहीं आना है, जहां से मैं बह करके आ रही हूं मैं तो नीचे उतर रही हूं, मैं मैदान से बहती हुई चली जाऊंगी, तुम मेरे पास वहीं पर आ जाना, तुम्हारे समीप से ही बहती चली जाऊंगी, तुम्हारा श्रम मैं लाघव कर देती हूं, पहाड़ पर चढ़ने का श्रम मैं हर लेती हूं। इसका मतलब कि मंदाकिनी का दर्शन करने के लिए हमें उस पहाड़ में जाने की आवश्यकता नहीं जहां से मंदाकिनी निकलती है, कि हमें उतना प्रयत्न नहीं करना है, वे हमारे लिए नीचे उतरती हैं, हमारे पास से बह करके जाती हैं, कहती हैं कि तुम यहीं पर आ जाओ। और मैं जब मंदाकिनी के पास पहुंच गया तो क्या मैं ऐसा पूछता हूं कि री मंदाकिनी तेरा पट कब बंद होता है, कब खुलता है? मंदाकिनी कहती है कि मेरा पट तो हरदम खुला हुआ है, मेरा पट कभी बंद नहीं होता। और क्या मैं मंदाकिनी के तीर पर खड़ा होकर के यह सोचता हूं मैं तो गंदा हूं, मेरे कपड़े गंदे हैं, मैं क्या करूं, मैं किस प्रकार से मंदाकिनी का स्पर्श करूं? मंदाकिनी कहती है अरे तू जैसा है वैसा चला आ, तू यदि गंदा है तो तेरी गंदगी को धो करके मैं साफ कर दूंगी, तू यदि अपवित्र है तो मैं तुझे पवित्र बना दूंगी, तू अगर अशुचि है तो मैं तुझे शुचिता दे दूंगी। तो यह मंदाकिनी का दर्शन जो किसी योग्यता की अपेक्षा नहीं करता बल्कि हमें योग्य बनाता है, हमें पवित्रता देता है, हमें शुचि कर देता है, मानो मंदिर का दर्शन है पिता का दर्शन और मंदाकिनी का दर्शन है माता का दर्शन। कैसे? पिता का दर्शन योग्यता की अपेक्षा रखता है पर माता का दर्शन योग्यता की अपेक्षा नहीं रखता, माता का दर्शन मानो योग्य बनाने का दर्शन है। अब पति और पत्नी अपने छोटे से बच्चे को लेकर के जा रहे हैं बाजार, कपड़ा पहन रखा है, और जिस समय माता वहां पर बंद कर रही है, ताला लगा रही है, अचानक लड़का वहीं पर कहीं छोटे से गड्ढे में गिर पड़ता है, उसके सारे कपड़े कीचड़ से सन जाते हैं, वह रोने लगता है। पिता ने देखा बच्चा गिर पड़ा, वह आया और बच्चा ललकता है ऊपर उठने के लिए, तो पिता क्या करता है? आप में से बहुत से लोग पिता हैं, आप जानते होंगे, ऐसी दो उंगली बढ़ाता है, कहता मुन्ना बस पकड़, यहां पकड़, मुझे नहीं पकड़ना, मानो बच्चे को यहां दूर दूर जा, अपनी मां से कहना तुझे साफ कर दे, जा करके अपनी गोद में उठा लेती है, उसे परवाह नहीं होती कि मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी, वह उठा करके बच्चे के सारे कीचड़ को अपनी साड़ी से पोंछती है, ले जाती है, बच्चे को साफ सुथरा करके कहती अब तू जा अपने पिता के पास। तो पिता योग्यता की अपेक्षा रखता है, माता योग्य बनाती है। इसीलिए यह जो यहां पर हमने कहा
मंदिर का दर्शन और मंदाकिनी का दर्शन, मंदिर का दर्शन अपेक्षा रखता है योग्यता की, मंदाकिनी हमें योग्य बनाती है। ऐसी यह रामचरित मानस की कथा है, यह रामकथा है जिसका गायन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। और अंत में जिसको हम कल मानो जिसकी चर्चा करेंगे वह यह है कि तुलसी ने अपनी राम कथा का नाम रामचरित मानस क्यों रखा। यह जो प्रश्न है कि रामचरित मानस रखा, बड़ा लंबा नाम रखा, जैसे वाल्मीकि ने रामायण रखा, गोस्वामी जी ने रामचरित मानस रखा, क्यों रखा, उसका तात्पर्य क्या है, और तात्पर्य हम पढ़ते हैं वहीं पर रामचरित मानस में ही हम उस तात्पर्य के संबंध में पढ़ते हैं।
रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसम सिंहासन भाखा, ताते राम चरित मानस बर धरु नाम हेरि हरसि हर।
कहते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसम सिंहासन भाखा, ताते राम चरित मानस बर धरु नाम हेरि हरसि हर। संकेत दे दें और आज का प्रवचन समाप्त करें, कल इसकी व्याख्या करेंगे। अब यहां पर उन्होंने कहा कि रामचरित मानस क्यों रखा, किसी ने पूछा तुलसी जी आपने यह नाम कैसे रखा, क्यों रखा। कहा भाई भगवान शंकर ने इसकी रचना अपने मन में करके रख ली थी, समय पाकर के उन्होंने पार्वती जी को यह कथा सुनाई, क्योंकि उन्होंने अपने मन में यह कथा रच करके रख ली थी इसलिए इसका नाम रामचरित मानस रखा है। अब यह बड़ी विचित्र बात है, आप पढ़ते हैं एक मान्यता यह है कि प्रभु श्री राम के प्राकट्य के पहले ही भगवान शंकर ने पहले से यह मानो उनके संबंध में यह लिख करके रख लिया, जैसे कहा ना रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो सिवासन भाखा, मानो बाद में श्री राम का प्राकट्य होता है, जन्म होता है, उसके बहुत पहले से महेश ने, भगवान शंकर ने अपने मन में रच करके इसे लिख लिया। अब यह बड़ी विचित्र बात है कि चरित्र की रचना तब होती है जब व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद क्रियाकलाप करता है तब तो उसे हम कहते हैं चरित्र। अब अभी श्री राम का जन्म हुआ नहीं है और भगवान शंकर ने पहले से लिख करके रख लिया है और उसके बाद श्री राम का जन्म होता है और उसके बाद वे चरित्र करते हैं, यह तो बड़ी ऊटपटांग बात लगती है। तो क्या ऐसी ऊटपटांग बात नहीं होती, होती है, कहां पर होती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का संकेत है कि यह ऊटपटांग बात होती है नाटक में, नाटक पहले लिखा जाता है और बाद में खेला जाता है, और जो चरित्र है पहले खेला जाता है और बाद में लिखा जाता है। तो यह जो भगवान शंकर ने रच लिया तो भगवान शंकर ने नाटक लिख करके रख लिया, इसका मतलब कि जब श्री राम आए और वे चरित्र करने लगे तो भगवान शंकर ने कहा कि भाई मैंने नाटक लिखा है और उस नाटक के अनुरूप आपको अभिनय करना पड़ेगा। मानो तुलसी का तात्पर्य है कि प्रभु अभिनय कर रहे हैं, बड़ा सांकेतिक तात्पर्य है और गूढ़ अर्थ इसके भीतर में भरा हुआ है। इसका मतलब क्या कि ब्रह्म अवतरित होता है और वह नाटक करता है, अभिनय करता है, और अभिनय करता है इसका मतलब क्या, अरे अच्छे से अच्छा अभिनेता हो कभी कभी अपना पार्ट भूल जाता है तो पीछे से प्रॉम्प्टिंग की जाती है, अरे यह बोलो, अरे यह बोलो। तो तुलसी कहते हैं हमारे प्रभु भी ऐसे विलक्षण अभिनेता हैं, भले ब्रह्म हैं पर जब वे बालक बनते हैं तो अपना पार्ट भूल जाते हैं, पहला ही पार्ट भूल गए, जन्म तो ले लिया और उसके बाद पहला ही पार्ट भूल गए, क्या पार्ट भूल गए, अब दूसरे को याद दिलाना पड़ा, माता को प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ी, अरे बेटा जब बालक के रूप में कोई जन्म लेता है तो वह रोता है, तू तो रो ही नहीं रहा है, तूने तो रोना ही बंद कर दिया है, तू रो जहां पर माता पुनि बोली सो मत डोनी, तजहू तात यह रूपा की जय शिशुलीला। शिशुलीला कीजिए कि महाराज जब बालक जन्म लेता है तो रोता है, आप तो अपना पहला ही पार्ट भूल गए, आप जरा रोइए। अब जब प्रभु को स्मरण करा दिया गया तो वो भी रोते हैं, और कैसे रोते हैं, तुलसी ने जो लिखा है वही लगता है कि भगवान राम को और उनकी लीलाओं को किस दृष्टि से वे देखते हैं।
माता पुनि बोली सो मत डोनी, तजहूं तात यह रूपा की जय शिशुलीला, अति प्रिय सीला यह सुख परमय अनुपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा।
रोदन ठाना, यह ठाना शब्द, ठान करके रोते हैं। अबे कोई रोए उसमें ठान करके रोने का क्या है, माने यही मानो संकेत पकड़ने का, पकड़ने के लिए चाबी कि वे ठान करके रोते हैं। इसका मतलब है जैसे मान लीजिए मुझे विदूषक का अभिनय मिला है, विदूषक हंसाता है, जोकर का मुझे पार्ट मिला है। अब मंच में मैं आ रहा हूं अपना पार्ट करने के लिए, श्रोताओं को हंसाने के लिए, और जो ही मैं सीढ़ी पर चढ़ रहा हूं कि एक व्यक्ति ला करके एक तार मेरे हाथ में थमा देता है, फाड़ करके मैं पढ़ता हूं तार में लिखा है तुम्हारा बड़ा लड़का मर गया। अब मेरे हृदय में तो हाहाकार, भीतर में तो रुदन, पर अभी तो मुझे विदूषक का अभिनय करना है। मंच पर मैं आता हूं तो वहां पर मैं हंसूंगा और श्रोताओं को हंसाऊंगा, तो कैसे, मैं ठान करके हंसूंगा, हृदय रो रहा है पर मैं ठान करके हंसता हूं क्योंकि यह अभिनय कर रहा हूं। प्रभु भी ठान करके रोते हैं, माने अभिनय में रोते हैं। और जब रोने लगते हैं, भक्तों ने तुलसी से कहा कि अब हमारे प्रभु तो रोने लगे तो हम लोग भी फिर रोएं साथ में। तुलसी ने कहा कि तुम लोग तो जीवन भर रोते रहे हो, यही तो एक मौका आया है जब प्रभु रो रहे हैं। हरदम तो प्रभु हंसते थे और तुम लोग रो ही रहे थे, अब यही मौका है जब प्रभु अब रो रहे हैं तो तुम लोग तो हंस लो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी आंखों का आंसू ले लिया है, तुम्हारे जीवन का दुख उन्होंने ले लिया है, तुम्हारे जीवन के दुख को स्वीकार करके अब प्रभु रुदन कर रहे हैं और तुम लोग आनंद मनाओ। जो प्रभु के रोने का इस रहस्य को जान लेता है, कहते हैं बड़ी अद्भुत बात, क्या जान लेता है, कहते हैं अरे देखो यह चरित्र जे गावही, जो गाते हैं इस चरित्र को, जो गाते हैं प्रभु रो रहे हैं पर हम उनके चरित्र का गायन करते हैं। तुलसी का तात्पर्य जो समझ लेता है कि प्रभु किस लिए रो रहे हैं, वह क्या करता है, कहते हैं जो हरि थे वे तो मनुष्य बन गए, लीला कर रहे हैं, अभी रुदन कर रहे हैं, तो जो हरि का पद है वह वैकन पड़ा हुआ है, खाली है। और अगर तुम इस रहस्य को जान लो कि प्रभु यहां पर बन करके, बालक बन करके कैसे रुदन कर रहे हैं, तो कहते हैं वह वैकेंसी तुम्ही को मिलेगी, हरि पद पावही। यह चरित जगावही हरि पद पावही ते न परहि भवकूपा, कहते हैं कि वो भवकूप में नहीं पड़ोगे, या तुलसी की दृष्टि। अब यह जो सांकेतिक अर्थ है कि प्रभु अभिनय करते हैं, लीला करते हैं, तो उनके जीवन के माध्यम से उसे देखने का प्रयास करेंगे या कल करेंगे।
कल हम कह रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भाव दृष्टि से भगवान श्री राम को देखा है, इसीलिए वे यह मानते हैं कि साक्षात ब्रह्म ही श्री राम का रूप धारण कर लीला कर रहा है। इतिहास दृष्टि में मानव पक्ष की प्रधानता होती है, भाव दृष्टि में भगवत्ता का प्राधान्य होता है, और इस भाव दृष्टि को लेकर के तुलसी ने यह राम कथा लिखी है। कल यह भी कहा कि तुलसी ने अपनी राम कथा का नाम रामचरितमानस क्यों दिया, उसका उत्तर देते हुए कहा कि भगवान शंकर ने अपने मानस में उस चरित्र को पहले से लिख करके रख लिया था, समय पाकर के पार्वती जी को उन्होंने सुनाया, चूंकि इस चरित्र का जन्म भगवान शंकर के मानस में हुआ इसलिए इसे रामचरितमानस कहते हैं। तो यह भी कहा था कि चरित्र की बात तो समझ में आती है कि मनुष्य जन्म ले और फिर उसके चरित्र का लेखा जोखा लिखा जाए, पर वह क्या है जो पहले से लिख लिया जाता हो और बाद में जिसे खेला जाता हो? तो कहा गया कि वह नाटक है, अभिनय है। और तुलसी यह मानते हैं कि साक्षात ब्रह्म श्री राम का रूप लेकर के अभिनय कर रहे हैं, मानो तुलसी के राम अभिनय करते हैं। और हमने यह भी कहा कि कितना भी अच्छा अभिनेता क्यों न हो, वह कभी कभी अपना पार्ट अपना अभिनय भूल जाता है, उसके लिए प्रॉम्प्टिंग की आवश्यकता होती है। तो प्रभु भी जिस समय बालक रूप धारण करते हैं तो अपना पहला अभिनय भूल जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि वे क्या करें। तब मां उन्हें स्मरण दिलाती हैं कि बेटे तू तो अपना पार्ट भूल गया। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वे रोते हैं, तू रो नहीं रहा है, तू रुदन कर। और प्रभु रुदन करते हैं, और कैसा रुदन करते हैं इसका चित्र कल खींचा था, सुनी, जहां पर कहते हैं वचन सुजाना रोदन ठाना, ठान करके। यह तुलसी की मान्यता है कि प्रभु ठान करके रोते हैं, और हम ठान करके कोई भी कार्य करते हैं इसका मतलब वह अभिनय होता है, वह सहज रूप से तो नहीं होता। जिसको हम ठान करके करते हैं मानो अभिनय ही तो करते हैं। अब भक्त ने उलाहना दी, प्रभु से कहा बड़े ब्रह्म से बालक होने आए, और जब नाटक ही करना था तो ठीक ढंग से नाटक करते। यह कहा है कि अपना ब्रह्म का बड़प्पन तुमने सदा अपने साथ जोड़ करके रखा है, जब तुम बालक बनना स्वीकार करते हो तब तुम्हें उचित था कि तुम बालक के समान अपना अभिनय करते, पर हर समय तुम्हें ब्रह्मता चढ़ी रहती है, फिर ब्रह्म से बालक क्यों बने? जस काछिय तस चाहिए नाचा, जैसा वेश जैसा स्वांग तुमने धरा है उस प्रकार से तुम्हें नाचना चाहिए, पर यह क्या है कि तुम अपने ब्रह्मत्व के बड़प्पन में डूबे रहते हो। प्रभु ने कहा तुमने तो मुझे बहुत सी बातें सुना दी भक्त, तुम कहते हो कि मैं अभिनय करना भूल गया, अपना पार्ट अदा करना भूल गया, यह तो तुम मुझ पर अभियोग लगा रहे हो। भक्त ने कहा कि अभियोग न लगाऊं तो क्या करूं, जब तुमने बालक होना स्वीकार किया है तब तुम्हें चाहिए था कि जन्म लेते ही तुम रोने लगते। प्रभु ने कहा तुम मेरी दृष्टि से देखो और तब इस पर विचार करो। तुम मुझ पर यह शिकायत लाद रहे हो कि मैं अपना अभिनय भूल जाता हूं, पर सचमुच मैं अपना अभिनय थोड़े ही भूलता हूं, तो फिर यह क्या बात हो गई? प्रभु ने कहा कि मुझ में कोई कामना तो है नहीं, मैं किसी कामना के वशवर्ती होकर के जन्म तो लेता नहीं, यह तो भक्त चाहता है, कहता है, रोता है प्रभु तुम आओ, और मैं भक्तों की कामना स्वीकार करके अवतरित होता हूं। यह मानव तन मैंने धारण किया तो क्या अपनी कामना से? यह तो भक्त की कामना थी, और भक्त की कामना को अंगीकार करके मैं शरीर धारण करता हूं, इसलिए जब मैं शरीर धारण करके आया हूं हर समय मुझे यही अपेक्षा रखती है कि मुझे क्या करना है, मुझे अपनी कामना नहीं, इसीलिए मुझे कर्म की प्रेरणा भी नहीं मिलती, इसलिए मैं चाहता हूं कि भक्त अपनी कामना मुझे बताए कि मुझे क्या करना है, और जैसा भक्त कहेगा वैसा मैं करूंगा। तो इस दृष्टि से यदि देखो तो तुम्हें यह दोष हटा लेना पड़ेगा कि मैं अपना अभिनय भूल जाता हूं। और सचमुच प्रभु क्या अभिनय भूलते हैं? वे तो सही अर्थों में भक्तों की कामना स्वीकार करके यह मानव तन धारण करते हैं। जिसके पास अभाव है, जिसके पास त्रुटियां हैं, जिसके जीवन में दैन्य है, वह व्यक्ति तो कर्म करता है, पर जिसके जीवन में पूर्णता है, अरे वह भला किसी प्रकार का कर्म करेगा? उसे कर्म करने के लिए किसी प्रकार की प्रेरणा प्राप्त होगी? प्रभु तो निष्काम है, और निष्काम के हृदय में किसी प्रकार की क्रिया उठ सकती है? तो प्रभु जो कहते हैं कितना सार्थक है, तुलसी ने कितना सार्थक संकेत दिया कि प्रभु जो मनुष्य रूप धारण करते हैं अपनी कामना से नहीं, वे तो भक्तों की कामना को स्वीकार करते हैं और नरतनु धारण करते हैं, प्रसंग उठाते हैं। मनुष्यत्रुपा का प्रसंग प्रसिद्ध है, हम पढ़ते हैं रामचरित मानस में तुलसी ने कितनी कुशलता के साथ अपने राम को हमारे समक्ष रखा है कि हम देख सकें, समझ सकें, जीवन के तथ्य को समझ सकें, जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य को समझ सकें और प्रभु किस लिए आकर के लीला करते हैं उस बात को भी समझ सकें। इसलिए तुलसी मनु और शत्रुप का प्रसंग लाते हैं। ये मनु कौन है? ये आदि मानव है। आदि मानव माने कैसे? आदि मानव जो उस ब्रह्म को, अरूप और अनादि और अखंड ब्रह्म को, अनाम ब्रह्म को रूप और नाम लेने के लिए बाध्य करते हैं, ऐसे ये मनु महाराज हैं जो निर्गुण और निर्विशेष तत्व को सगुण और सविशेष बनाते हैं। और इसीलिए वह ब्रह्म भी तो अवतरित होता है। मिस्टर एकहार्ट एक बड़े जर्मन दार्शनिक हो गए हैं, रहस्यवादी हो गए हैं। वे कहा करते थे, वे अवतारवाद को स्वीकार करते थे और कहते थे गॉड बिकम्स मैन सो दैट मैन मे बिकम गॉड। ईश्वर मनुष्य बनता है, किस लिए मनुष्य बनता है? इसलिए मनुष्य बनता है कि जिससे मनुष्य ईश्वर बन सके, इसके लिए वह ईश्वर मनुष्य बनता है। कितनी बढ़िया बात कही। तो यहां पर भी वे ईश्वर मनुष्य का रूप धारण करते हैं, किस लिए? ताकि यह मनुष्य उस ईश्वरता का अनुभव जीवन में प्राप्त कर सके और उस ईश्वरत्व तक पहुंचने के लिए अपने को क्षमता प्रदान कर ले और ईश्वरत्व तक पहुंचने की सिद्धि प्राप्त अपने जीवन में कर ले सके। इसलिए प्रभु मनुष्य बनते हैं। अब मनु और शत्रुपा का प्रसंग। मनु अपनी पत्नी शत्रुपा को लेकर के राज्यपाट सब छोड़ करके चले जाते हैं और बड़ी कठिन तपस्या करते हैं और वे तपस्या में मग्न हैं। घोर तपस्या उनकी चली हुई है और वहां पर हम क्या पढ़ते हैं कि उनकी तपस्या को देख करके विधि हरि हर ये आते हैं और आकर के क्या कहते हैं?
विधि हरि हर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा।
मनु के पास बहुत बार आए। विधि हरि और हर, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये अपार तप देख करके मनु के पास बारंबार आते हैं और आकर के क्या कहते हैं?
मांगो बर बहु भांति लुभाए परम धीर नहीं चल ही चलाए।
बार बार आकर के कहते हैं कि वरदान मांगो, पर मनु महाराज बड़े धीर हैं, वे अपनी आंखें नहीं खोलते, यह ध्वनि सुनकर के भी वे विचलित नहीं होते। बड़ा सार्थक संकेत है। गोस्वामी जी ने इसके माध्यम से एक विलक्षण दार्शनिक संकेत हमें दिया है। वह क्या दार्शनिक संकेत है? कि यहां पर बार बार ब्रह्मा आते हैं, विष्णु आते हैं, महेश आते हैं और कहते हैं कि तुम वरदान ले लो, परंतु मनु महाराज अपनी तपस्या से विचलित नहीं होते, वे अपनी आंखें नहीं खोलते। और तब हम पढ़ते हैं कि एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी क्या कहती है?
मांग मांग भई वरुण भुवानी परम गभीर कृपा अमृत सानी।
मांग मांग बरु भई नभवानी की नभोवाणी होती है। आकाशवाणी कहती है कि तुम वरदान मांगो, वरदान मांगो। और तब इसके बाद हम देखते हैं कि मनु महाराज अपने वचनों से वरदान मांगते हैं, मानो वे अपनी आंखें खोलते हैं, वे अपनी समाधि से हटते हैं, अपने ध्यान को भंग करते हैं उस वाणी को सुन करके। अब संकेत यह है इसके पीछे का कि गोस्वामी तुलसीदास जी ये बताना चाहते हैं कि जैसे यह संसार उत्पन्न हुआ है, नाम रूप हमें दिखाई देता है विश्व में, और नाम रूप कहां से उत्पन्न हुआ है? हम मानते हैं कि उस निर्गुण ब्रह्म से, जहां पर कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है। तब वे यह बताना चाहते हैं कि पहले नाम अथवा पहले रूप, यह दार्शनिक संकेत है जो संकेत इसके माध्यम से हमें देते हैं कि प्रथम नाम हुआ या प्रथम रूप हुआ। अब यह जो हमारी दार्शनिक प्रक्रिया है, शास्त्रों को पढ़ते हैं तो वहां पर यही पढ़ते हैं कि जो निर्गुण है, निर्विशेष ब्रह्म है, जिस समय वह विश्व के रूप में अपने को अभिव्यक्त करता है तो सबसे पहले नाद के रूप में, स्फोट ब्रह्म के रूप में, प्रणम अदाद के रूप में शब्द ब्रह्म के रूप में अपने को अभिव्यक्त करता है और फिर उसके बाद भिन्न भिन्न रूप होते हैं, पहले नाम और फिर उसके बाद रूप। और यहां पर मनु महाराज के पास पहले रूप आ गए, विधि एक रूप है, ब्रह्मा का एक रूप है और उसी प्रकार विष्णु का रूप है, शिव का रूप है। रूप धर करके ये आते हैं और कहते हैं कि तुम मांगो तुम मांगो, इसका मतलब कि रूप पहले और नाम बाद, कि तुम वरदान मांगो मनु, और तब मनु वरदान मांगते हैं। क्या वरदान मांगते हैं?
उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई।
कि जिस समय नभोवाणी कहती है कि वरदान मांगो, तो आपने यह सूक्ष्म अंतर समझ लिया होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश आए और उन्होंने कहा वरदान मांगो, पर मनु महाराज अपनी आंखें नहीं खोलते। इसका मतलब यह है कि उस क्रम को स्वीकार नहीं करते कि रूप पहले आ जाए और उसके बाद नाम उद्गीरित हो। वे कहते हैं कि यह क्रम मुझे स्वीकार्य नहीं है, पहले तो नाम आना चाहिए और उसके बाद मैं रूप को देखूंगा। इसलिए उन्होंने आंखें नहीं खोली, पर जिस समय नभोवाणी हुई कि वर मांगो, मानो नाम पहले आया, तब वे अपना ध्यान भंग करके कहते हैं
उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चिंतहि परमारथ बादी। नेति नेति जहि निगम निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। ऐसे प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तनु गहई।
कितनी अद्भुत बात उन्होंने कही जब नभोवाणी हुई कि वरदान मांग लो, तो कहते हैं प्रभु जब आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं तो वरदान मांगता हूं। क्या वरदान मांगते हो? मैं जानता हूं कि आपको शास्त्रों ने नेति नेति कह करके पुकारा है, कहा है कि आप अनंत हैं, अखंड हैं, अनादि हैं, और आपका चिंतन परमार्थवादी नेति नेति करके कहते हैं, और जो आप निजानंद स्वरूप हैं, निरुपाधि हैं, अनूप हैं, और प्रभु आपसे ही तो शंभु पैदा हुए, आपसे ही तो ब्रह्मा पैदा हुए, आपसे ही तो ये विष्णु पैदा हुए।
शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तनु गहई।
ऐसे जो प्रभु हैं, जो अपने आप को ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में प्रकट करते हैं, हमने ऐसा सुना है कि भक्तों के लिए वे लीला तनु धारण करते हैं। तो प्रभु जब आपने कहा कि वरदान मांगो, तो बस यही वरदान मांगता हूं कि हम आपको देखना चाहते हैं। अब वही बात आ गई, नभोवाणी पुनः होती है, कहा कि मनु तुम मुझे देखना चाहते हो, यह तो ठीक है, पर तुम किस रूप में मुझे देखना चाहते हो, यह तो तुमने नहीं बताया। मेरा कोई बना बनाया रूप तो है नहीं, यह तो भक्त मुझे सांचा देता है और उस सांचे में मैं अपने को ढाल करके उसके समक्ष प्रकट होता हूं। तो तुम बताओ किस रूप में तुम्हारे समक्ष आना है, तो मैं आ जाता हूं, मेरा अपना कोई बना बनाया रूप नहीं है। इसलिए जब तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे सामने आऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस रूप में तुम्हारे सामने आऊं। तुम लाओ अपना काम, यह जो तुम्हारी कामना है, तुम्हारी इच्छा है, उस इच्छा का सांचा मेरे समक्ष रखो। ठीक है, मैं उसमें ढाल करके तुम्हारे समक्ष आता हूं। और जब प्रभु ने ऐसा कहा कि मेरा अपना कोई रूप नहीं, यह तो भक्त जिस रूप में मुझे देखना चाहता है वह रूप मैं धारण करता हूं, तो बड़ी चतुराई कर जाते हैं मनु महाराज।